आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम वर्षा है और मैं गांधीनगर गुजरात में रहती हूँ। आज हम लोग कक्षा 8वीं के इतिहास का पाठ 3 करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो जैसा कि आखिरी पाठ में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने किस तरह से एकमात्र फैक्ट्री स्थापित करने से धीरे धीरे पूरा एक औपनिवेशिक शासन करना शुरू कर दिया, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों को लगा कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि आखिरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 12 अगस्त 1765 को जो मुगल के बादशाह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। अब हालांकि हो सकता है कि ये घटना एक छोटी सी हो, जिसमें कुछ अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में ये घटना घटी हो, लेकिन बंगाल की दीवानी को कब्जा कर लेने से, उसको हाथ में आ जाने से अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी। तो दीवानी जब उनको मिल गई तो कंपनी अपने नियंत्रण वाला जो क्षेत्र था वहां के आर्थिक मामलों की वो शासक बन गई थी, वहां के आर्थिक मामलों की वो राजा बन चुकी थी। तो अब उसे उस जमीन जिसका हिस्सा उसे मिला है उसको चलाना और आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए रास्ता ढूंढने की जरूरत थी। तो यहाँ पे उसको कुछ ऐसा रास्ता निकालना था कि जिससे कंपनी का जो बढ़ता हुआ खर्च है उसको पूरा करने तक के लिए आमदनी इकट्ठा हो सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये भी ध्यान रखना था कि वो अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उसे खरीदती रहे और उससे बेचती रहे, जिससे कि उसका मुनाफा होता रहे। अब धीरे धीरे कंपनी को इस समझ में आने लगा कि उन्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाहरी ताकत थी, वो अंग्रेज बाहर से आए थे तो उन्हें लोगों को भी शांत करना जरूरी था। समय समय पर थोड़ा बहुत दिखावे के लिए ही सही, पर उनके हित में काम करना जरूरी था। और उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि गांव देहात में सबसे पहले उनको शासन लाना चाहिए। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, जो पहले स्थान अपने जगह पे राजा रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी था। नियंत्रण कर सकते थे, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब ये कैसे होगा, तो इस पाठ में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे कंपनी ने गांव के इलाकों को उपनिवेश बनाया और आय के संसाधन, कमाने के उन्होंने संसाधन कैसे ढूंढे और लोगों के अधिकार उन्होंने तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कराई। तो अभी हम लोग यही देखेंगे इसके अंदर। अब हम पहले बात करते हैं कंपनी की आमदनी। अभी कंपनी को दीवानी तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी वो खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी को चाहिए कि वो भारी भरकम लगान इकट्ठा करे, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में वो हिचकिचा रही थी। उन्हें ये तो चाहिए था कि उन्हें लगान मिले, पर उसको कैसे वसूला जाए उसकी एक व्यवस्था करने में वो थोड़ा डर रही थी। वो ये चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो कर है, राजस्व है, वो हासिल कर सके और कम से कम कीमत पर सूती और रेशम कपड़ा खरीद सके। सिर्फ अपने मुनाफे की वो सोच रही थी। 1865 था, उससे पहले कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से सोना चांदी को मंगवाती थी और इन चीजों को देकर के उसके बदले अपने मतलब का सामान वो खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में पैसा बहुत इकट्ठा हो चुका था और उससे वो निर्यात के लिए चीजें खरीद सकते थे, तो उन्हें अब ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाने की जरूरत नहीं थी। अब जल्द ये समझ में आ गया था कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मुश्किल में आ चुकी है। जो कारीगर थे वो गांव छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पे, उससे तो उनका कोई खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। जो चीज वो बनाने के लिए उपयोग कर रहे थे उसका भी खर्चा उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो इतनी कम कीमत पे उनको चीजें जबरन बेचनी पड़ रही थी, इसलिए वो गांव छोड़ के भाग रहे थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का जो उत्पादन था वो कम हो रहा था और खेती तो पूरी तरीके से चौपट ही हो गई थी। 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में, जिसमें 1 करोड़ तक लोगों की मौत हो गई थी और 1/3 आबादी लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो ये बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत ही भयंकर स्थिति थी बंगाल में। अब अर्थव्यवस्था अगर संकट में आ गई तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कैसे रह सकेगी भाई, अर्थव्यवस्था संकट में है तो क्या कंपनी को ये संतुष्टि रहेगी कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही तो लोग कर कैसे चुकाएंगे, और उन्हें राजस्व तो चाहिए था। तो कंपनी के जो अफसर थे उनको ये लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी कैसे कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर बहस चली और कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके अंदर क्या था, इसके हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता प्राप्त कराई गई और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो किसान से लगान वसूले और कंपनी को राजस्व इकट्ठा करके दे। यानी कि इन जो राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बनाया गया, अब इनकी जिम्मेदारी थी कि इनको लगान वसूलना है और कंपनी को राजस्व चुकाना है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, फिक्स कर दी गई, यानी कि इसे भविष्य में कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था। अब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर बढ़ा नहीं रहे तो नियमित रूप से राजस्व भी मिलेगा और जमींदार जो है वो जमीन को सुधारने के लिए भी खर्च करने का प्रोत्साहन उनको मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व नहीं बढ़ाया जाएगा तो जमींदार अपने बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे और अच्छे तरीके से खेती करने के चीजों के बारे में वो सोचेंगे। लेकिन हर चीज की कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन अब ये बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों को ये देखा गया, ये पाया गया उनके द्वारा कि जमींदार जो थे जमीन में सुधार करने के लिए तो कोई खर्चा ही नहीं कर रहे थे। कंपनी ने जो राजस्व तय किया वो इतना ज्यादा था कि जमींदारों को उसको चुकाने में परेशानी हो रही थी, वो वही नहीं चुका पा रहे थे तो सुधार के लिए क्या खर्चा करेंगे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे फिर खेती का विस्तार हुआ। अब जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आ गया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, तो जमींदारों को लगा कि राजस्व तो अब बढ़ेगा नहीं, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। इसकी वजह से कंपनी को फायदा नहीं हुआ, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि अब राजस्व बढ़ने वाला नहीं है। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह ही बिल्कुल नहीं थी। और दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये व्यवस्था बिल्कुल खट रही थी। किसान को क्योंकि जो लगान वो दे रहे थे वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। अगर उन्होंने लगान नहीं चुकाया तो उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से निकाल दिया जाता था। तो जमींदारों को फायदा होने लग गया था, ना ही ब्रिटिश को फायदा हो रहा था, ना ही गांव के किसान को फायदा हो रहा था। तो भाई इसके ऊपर भी फिर बहस चली। तो अब ब्रिटिश ने सोचा कि कोई नया बंदोबस्त करना चाहिए, नया बदलाव लाना चाहिए। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होटल मैकनीजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था लेकर आए जिसे 1822 में लागू किया गया। अब इसमें उन्होंने क्या किया, कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। अब गांव के जो एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। तो ये उनका एक आइडिया था, राजस्व इकट्ठा करके और उससे कंपनी को अदा करने का जिम्मा पहले जमींदार को दिया गया था, अब उसके बजाय गांव के ही मुखिया को सौंप दिया गया और इसको नाम दिया गया महलवारी बंदोबस्त। तो ये जो थी एक नई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई क्योंकि पहली वाली में तो समस्या आ गई। अब ब्रिटिश नियंत्रण वाला जो दक्षिण भारतीय इलाका था वहां पे भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नए बंदोबस्त लाने की कोशिश की जा रही थी। तो वहां पे जो थी व्यवस्था वो आई रियतवार बंदोबस्त। इसमें क्या था, थॉमस मुनरो ने ना ज्यादा इसको थोड़ा विकसित किया, इसका प्रचार किया और पूरे दक्षिण भारत में व्यवस्था लागू कर दी गई। इसमें क्या था कि सीधे किसानों जिनको रेतो कहा गया उन्हीं से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे, यानी कि बिचौलिया बीच में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ही जिसकी खेती हो रही है उससे हम लोग कर वसूलेंगे। और राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति एक फादर की तरह किसान की रक्षा करनी चाहिए। तो तीन बंदोबस्त हमने यहाँ पे देखे। नई व्यवस्था तो लागू हो गई लेकिन उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद समस्या आने लगी। जमीन से जो होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा ही टैक्स फिक्स कर दिया। अब किसान इतना चुका नहीं पा रहे थे, जो रैयत थे वो गांव से भाग रहे थे, गांव वीरान हो गया, कोई खेती नहीं, कुछ भी नहीं। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था आएगी तो किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी समस्या तस की मसी रही। यूरोप के लिए फसलें, अंग्रेजों ने अब क्या महसूस किया कि ग्रामीण इलाके ना केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है, यानी कि जिस चीज की यूरोप को जरूरत है उस हिसाब से वो यहाँ पे उसी चीज की खेती करवाएंगे। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी अपने फायदे की फसल को उगाने के लिए किसानों को वो मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो अपनी फायदे की चीज ये करवाते रहे। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से वो अपनी फायदे का काम करा रहे थे। अब भारत में धीरे धीरे नील की खेती की मांग बढ़ने लगी। देखिए, नील का जो पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे उन्हें कपड़े की रंगाई के लिए इस नील का इस्तेमाल करना होता था। तो भारतीय नील की थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती थी और कीमत भी ज्यादा रहती थी। तो वहां के जो कपड़ा उत्पादक थे बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नाम का एक और पौधे पर वो निर्भर रहते थे, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी। अब ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और यूरोप में आसानी से मिल जाता था, पर क्या था कि जो इसकी क्वालिटी थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी नील की क्वालिटी थी। तो 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को नील की ही वो डिमांड करने लगे कि नील ही हमें चाहिए। तो कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। तो 18वीं शताब्दी तक भारतीय नील की मांग बहुत बढ़ गई थी और ब्रिटेन में भी औद्योगिकरण शुरू हो चुका था और कपास के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। अब कपड़ों की जो रंगाई की मांग ज्यादा बढ़ने लगी और जैसी नील की मांग बढ़ी तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, देखिए यूरोप में नील की मांग तेजी से बढ़ रही थी, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी तरीका ढूंढने लगी कि किस तरीके से भारत में नील की खेती को बढ़ाया जाए। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती बहुत फैलने लगी। बंगाल में जो पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर पूरी तरीके से छा गया था, मतलब कि नील में भारतीय नील का जो हिस्सा था, जो आयात किया जाने वाला नील का हिस्सा था 1788 में वो 30% था और 1810 में ये 95% हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय नील की जो कितनी आयात और कितनी मांग बढ़ चुकी थी। तो भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए, क्योंकि अब सबको दिखने लगा कि नील में फायदा है यहाँ की खेती से। तो सब लोग यहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए आए, नील के बागान उन्होंने लगा दिए और जिसके पास नील को उगाने के लिए पैसे नहीं थे उन्हें कंपनी और बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो अब जो थी ब्रिटिश वो तरीका ढूंढ रही थी कि किस तरीके से नील की खेती यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा की जाए। नील की खेती दो तरीकों से होती थी, निज और रेती। निज यानी कि पर्सनल, आप मान सकते हैं। इसमें क्या था कि बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। अब इसमें क्या करते थे, वो या तो जमीन खरीदते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूर को लगा देते थे काम करने के लिए। अब लेकिन निज खेती में समस्याएं थी। देखिए क्या थी, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत कम था तो कम ही नील का उत्पादन हो पाता था। अब नील चाहिए ज्यादा और नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए, क्योंकि क्षेत्रफल कम था, उन्हें और जगह उगाने थे और वहां के किसानों को उन्होंने हटा दिया जमीन हड़पने के चक्कर में। टकराव और तनाव पैदा होने लगा इस तरीके से। तो ये निज खेती की समस्या हम देख रहे हैं। एक बीघा नील की खेती लिए कम से कम 2 हल चाहिए होते थे, यानी कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। तो हम लोग देख रहे थे नील की खेती के बारे में। तो अभी क्या थी, निज खेती में समस्याएं पैदा होने लगी, जमीन कम थी और खेती उनको ज्यादा करनी थी। अब रेयतों की जमीन पर जो नील की खेती होती थी उसके बारे में देखते हैं। रेयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे, तो कई बार वो गांव के मुखियाओं को भी रेयतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, जिन्होंने सिग्नेचर कर दिया और सट्टे पर, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था और रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी थी। जितनी जमीन उसमें 25% खेती नील की होगी। अब बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना या बीज बोना या फसल की देखभाल करना ये सब काश्तकारों के ऊपर रहता था। तो पहले तो किसान को ये चीज अच्छी लगने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ना तो उनका कोई फायदा हो रहा है और कर्ज में वो लोग डूबते जा रहे हैं। तो फिर किसान को समझ आने लगा कि ये चीज अच्छी नहीं है, उन्हें कीमत भी कम मिल रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो क्या हुआ, नील विद्रोह के बारे में बात करते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ये समझ आने लगा कि उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा। अब जिस तरीके से ये विद्रोह फैलने लगा, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। तलवार, भाले, तीर, कमान सब लेकर के नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। सब इधर उधर लड़ाई शुरू हो गई। जो एजेंट होते थे वसूली के, उनको पीट दिया गया और रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वो खेती करेंगे और ना वो करने देंगे, कर्जा भी नहीं लेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तो बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन, जो मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, सट्टे पर जबरन तरीके से दस्तखत कराए गए थे, उन्हों को ही नील किसानों ने अपने इस विद्रोह में शामिल कर लिया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। अब नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी उनका साथ देगी, ऐसा उनका मानना था। तो 1857 की बगावत के बाद जो अपना रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ब्रिटिश सरकार एक और विद्रोह से थोड़ा डरने लगी थी कि भाई और विद्रोह नहीं होना चाहिए। तो जब नील के खेती वाले जिलों में ये बगावत की खबर फैलने लगी कि भाई ये लोग विद्रोह करने लगे नील की खेती के खिलाफ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में उस इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकारी उनकी दूरदर्शा से परेशान है, इसीलिए वो आके देख रही है कि क्या चल रहा है। अब उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये लगने लगा कि क्या बोलते हैं आपको, कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया, ठीक है, इस नोटिस के आधार पे। तो इडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी इस कार्रवाई से किसानों को लगा कि अंग्रेज उनका साथ दे रहे हैं और उनकी विद्रोह का वो समर्थन कर रहे हैं। अब इस बगावत से परेशान होकर के सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तक बुलानी पड़ गई। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया और इस आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया गया। जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, तो उन्होंने इनका समर्थन किया। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा कर दे, जो उन्होंने दस्तखत किए उसको पूरा करे, लेकिन आगे से अगर वो चाहते हैं कि नील की खेती बंद करना तो वो बंद कर सकते हैं, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के जो किसान थे उन्होंने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दशा, उनकी जो स्थिति है, भयभीत करने वाली स्थिति को देखने के लिए न्योता दिया था और 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बहुत ही प्रसिद्ध चंपारण आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन है, तो ये चंपारण में हुआ था नील की खेती के लिए। तो इस पाठ में हमने नील की खेती और किस तरीके से ब्रिटिश का गांव पे शासन था उसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।